बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ाविया निगाह में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, हस्ब मामूल आज भी हम हफ्ते के अहम वाक़ियात और तगैयुरात पर तजज़ियाती नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले आइए मुलाहिज़ा फरमाइए हमारी आज की गुफ्तगू के अनावी।
म्यांमार के मुसलमानों की सूरत हाल। लबनान के शिमाली इलाकों की मशकूक लड़ाइयां। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की टारगेट किलिंग। अमेरिका में खरबों डॉलर का बजट खसारा। तेहरान में नावापस्ता तहरीक का इजलास।
राबिते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
जी नाज़रीन, ये थे हमारी आज की गुफ्तगू के मौजूआत। तो सबसे पहले म्यांमार। म्यांमार के सदर ने मुसलमानों के कत्लेआम में इंतहा पसंद बुद्धिस्टों और फौज की साजबात की बात की तरदीद करते हुए कहा है कि ये बांग्लादेश के पनाह गुजी मुसलमान हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
म्यांमार के मुसलमानों के खिलाफ आलम इस्लाम के शदीद एहतजाज और इस मुल्क के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम में इंतहा पसंद बुद्धिस्टों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान करीबी तआवुन के बारे में सामने आने वाले मौसब दस्तावेजात के बरखिलाफ म्यांमार के सदर तैन सैन ने अपने गैर हकीकत पसंदाना बयान में मुसलमानों के कत्लेआम में बुद्धिस्टों और फौज के मुलव्वस होने की तरदीद करते हुए एक बार फिर अपने मुल्क में आबाद मुसलमानों को बांग्लादेशी मुहाजरीन करार दिया है। म्यांमार के सदर ने इसी तरह अपने मुल्क के 10,000 मुसलमानों के कत्लेआम के असल हकायक का पता लगाने की गरज से किसी आलमी तहकीकाती कमेटी के क्याम की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया है। म्यांमार की वजारत खारजा ने भी बुध के रोज एक बयान जारी किया है जिसमें हुकूमत म्यांमार पर नस्ली और मजहबी तासुबात को हवा देने और मुसलमानों के खिलाफ दबाव के हरबे इस्तेमाल करने के इल्जामात को हकायक के मुनाफी करार दिया गया है। बयान में कहा गया है कि राखीन सूबे का मामला म्यांमार का अंदरूनी मामला है और इसमें किसी भी तरह की बैरूनी मुदाखलत के बारे में खबरदार किया गया है। म्यांमार की हुकूमत का ये मौकफ ऐसे वक्त में सामने आया है जब 16 अगस्त को मक्के में इस्लामी तआवुन तंजीम के 57 मुल्कों के सरबराहों ने अपने इजलास के दौरान म्यांमार के मुसलमानों के कत्लेआम का मामला अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में उठाने का फैसला किया है। इस्लामी तआवुन तंजीम के सरबराही इजलास के अख्तितामी बयान में कहा गया है कि तमाम इस्लामी ममालिक म्यांमार के मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत म्यांमार के मुखासिमाना इक़दामात और उन्हें अपने मुल्क का शहरी तस्लीम न किए जाने के अमल की सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं और म्यांमार के मुसलमानों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा करते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा ने भी म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को दुनिया की मजलूम तरीन अकलियत करार दिया है और म्यांमार के सूबे राखीन के शिमाली इलाके में महसूरीन की हैसियत से जिंदगी गुजारने वाले 8 लाख मुसलमानों की नागुफ्तगू सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश जाहिर की है। रोहिंग्या मुसलमानों का शुमार म्यांमार की उन अकलियतों में होता है जिन्हें हुकूमत म्यांमार की जानिब से अपना शहरी तस्लीम नहीं किया जाता और उन्हें इस मुल्क के शहरी हुकूक भी हासिल नहीं है। सोने पर सुहागा यह है कि इस मुल्क के इंतहा पसंद बुद्धिस्ट उन्हें अपना दुश्मन तसव्वुर करते हैं। इस तरह के गैर इंसानी नजरियात की वजह से म्यांमार की आम आबादी भी रोहिंग्या मुसलमानों को गैर कानूनी तारीके ने वतन समझती है और उनके खिलाफ अपनी दुश्मनी का इजहार करती रहती है। अगरचे म्यांमार के सदर ने मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हालिया जराइम में अपनी हुकूमत के मुलव्वस होने की तर्दीद की है, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर आला सरकारी हुक्काम भी मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंद बुद्धिस्टों के हमलों में बराह रास्त मुलव्वस न हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे वाकयात की रोकथाम में कोताही बरतने की वजह से उन्हें कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा।
नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आप YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है www.facebook.com/sahar-urdu-tv और यूट्यूब पर हमारा एड्रेस नोट कर लें www.youtube.com/sahar-tv-urdu। नाज़रीन अब अगला मौजू हमारी आज की इस नशिस्त का, शुमाली लेबनान के इलाके तराबलस में मशकूक अंदाज में लड़ाइयां जारी हैं जिनमें 13 अफराद मारे जा चुके हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इस लड़ाई को इलाकाई सतह के एक मंसूबे का नतीजा करार दिया जा रहा है। मुलाहिजा फरमाइए हमारा तबसरा।
लबनान की अंदरूनी सूरत हाल के तनाजुर में मुसल्ला झड़पों और सियासी बयानात से पता चलता है कि दो रोज कबल मुल्क के शिमाली शहर त्राबलस में झड़पों का नया मरहला खास इलाकाई अहदाफ के तहत अंजाम पाया है। लबनान के अंदर झड़पों का सिलसिला दो रोज के वक्फे के बाद पीर 22 अगस्त को एक बार फिर शुरू हो गया और त्राबलस के दो इलाकों बाबत तिबाना और जबल मोहसिन में लड़ाई जारी है। इन झड़पों में अब तक 7 अफराद मारे जा चुके हैं और 100 के करीब जख्मी हुए हैं। लबनान के दो टोक सियासी मौकिफ के सामने आने के बाद शुरू होने वाली ये झड़पें इस बात की निशानदही करती हैं कि ये सारा खेल लबनान की मौजूदा हुकूमत के मुखालिफीन और इसी तरह शाम की बशार हुकूमत की मुखालिफीन की मिली भगत है। इन झड़पों का असल मकसद शाम की सूरत हाल पर असरअंदाज होना है। कराइन और शवाहिद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लबनान के अंदर होने वाली झड़पों में अपोजिशन और शाम मुखालिफीन का हाथ मुलव्वस है। लबनान के LBC टेलीविजन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि मगरिब नवाज अल मुस्तकबिल पार्टी के सरबराह साद हरीरी ने रमा माह के दौरान कतर और सऊदी अरब का दौरा किया था और दोनों मुल्कों की जानिब से $4 अरब दरियाफ्त किए हैं। लबनान के वजीर आजम नजीब मिकाती ने भी अपने एक बयान में इस बात की तस्दीक की है कि मुल्क के अंदर जारी झड़पें इलाकाई अहदाफ के तहत अंजाम पा रही हैं। उनका कहना था कि हमने शाम में लगी आग के बारे में लबनान को पहले ही खबरदार कर दिया था, लेकिन एक बात पूरी तरह से वाज़ह है कि बाज़ ग्रुप मुल्क को शाम के अंदरूनी मामलात में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लबनान में जारी झड़पों में उस वक्त और भी शिद्दत देखने में आई जब शामी फौज को दहशतगर्दों की सरकोबी और हालात पर काबू पाने में नुमाया कामयाबियां हासिल होने लगी। मौजूदा हालात में भी जब शामी फौज बड़ी कामयाबी के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अमन व अमान की बहाली और दहशतगर्दों के सफाए में मसरूफ है, मगरिब और उसके इलाकाई इत्तेहादी शाम के बारे में अपनी पॉलिसियों की नाकामी को पूरी तरह से महसूस करने लगे हैं, लिहाजा उन्होंने बदअमनी का दायरा लबनान तक फैलाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस बात की एक वजह यह है कि लबनानी सिक्योरिटी इदारों का अंदरूने मुल्क लड़ाई में उलझ जाना लबनान शाम सरहद पर उनकी गिरफ्त ढीली कर देगा और लबनानी सिक्योरिटी इदारों की सारी तवज्जो अंदरूनी झड़पों की जानिब मरकूज होकर रह जाएगी। लबनान की फौज सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की तवज्जो का बढ़ जाना इस बात का बाइस बनेगा कि शाम में ज्यादा से ज्यादा असलहे की तरसील और गैर मुल्की दहशतगर्दों को दाखिल कराने का मौका फराहम हो। इसके नतीजे में शाम का बहरान कई और शहरों में फैलेगा और यूं शामी हुकूमत को मजीद दबाव का सामना करना पड़ेगा। सदर बशार असद की हुकूमत के इलाकाई और मगरबी मुखालिफीन बहरान शाम के बारे में इंतबाहात देकर शाम के हमसाया मुल्कों को बशार असद के खिलाफ दबाव में अपने साथ शरीक करने की तरगीब दिलाते रहे हैं। अमरीकी सेनेटर जॉन मैककेन ने, जिन्होंने जुलाई के महीने में लबनान का दौरा किया था, शाम से आने वाले महाजरीन की तरफ से लबनान को दरपेश खतरात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और कहा कि शाम की सरहद के करीब एक बफर जोन कायम किया जाना चाहिए। मैककेन ने कहा था कि 25,000 से 30,000 शामी महाजरीन इस वक्त लबनान में हैं और ये बात लबनानी हुकूमत के लिए इंतहाई तशवीश का बायस बनी हुई है, लिहाजा इस मामले पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए।
नाज़रीन पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की टारगेट किलिंग की वहशियाना मुहिम से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी है। हालात पर तबसरा मुलाहिज़ा फरमाइए मारूफ तज़िया निगार आगा मसूद हुसैन का।
देखिए इसकी वजूहत बड़ी साफ है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ब्लैक वाटर जो है वो ऑपरेट कर रहा है, फिर इसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान है के जिनको बाज ताकतों की हिमायत हासिल है और वो इन्हीं के इशारे पे जो है वो अहले तशीद को बताकत्ल कर रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि शिया सुन्नी जो है तसादुम होने वाला है। हालांकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, शिया जो है अहले तशीद जो है वो बहुत ही पुरमन लोग हैं और पाकिस्तान में सुन्नियों की अक्सरियत है जो खुद भी पुरमन है, वो इस किस्म का सोच भी नहीं सकते, बराबर बराबर मकान में रहते हैं। लेकिन ये जो तीसरी कुव्वत है वो जो है इन किराए के काकनों को इस्तेमाल करती है, मुख्तलिफ तंजीमों के नाम से उनको पैसे के जरिए लालच देती है और उनका ब्रेन वॉश करती है और उनसे ये कहती है कि आप किसी भी एक शिया को मारेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, आपको हूरें मिलेंगी, आपको एक ऐसी औरत मिलेगी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी। तो ये इस किस्म के जो उनको लेक्चर दिए जाते हैं, तो ये लोग नादान लोग हैं, जाहिल हैं, तालीम नहीं है, लेकिन पैसे की लालच से ये सारे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है और ये जरदारी साहब की जो हुकूमत है ये बदतरीन हुकूमत है। 65 साल में ऐसी बुरी हुकूमत कभी मारे से वजूद में नहीं आई। लाकानूनियत इतनी आम है कि कराची में औसतन 10 आदमी मारे जाते हैं और 10 में जो मारे जाते हैं बेचारे उनमें अक्सरियत सुन्नी को भी होती है, ऐसा नहीं कि अहले तशी मारे जा रहे हैं कराची में। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ हुकूमत की कोई रिट नहीं है, हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है और हुकूमत जो है उनके सामने दहशत गर्दों के सामने कानूनियत फैलाने वालों के सामने मजबूर है और बल्कि उनकी महकूम बन गई है। तो उस सूरत में जाहिर है कि ये ऐसे लोग समाज दुश्मन अनासे लोग के कातिल दंदनाते फिरते हैं और ये काम करते हैं। क्योंकि इसमें अभी हाल ही में तो मालूम है कि अहले तशी और अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान बाकायदा एक अमन समझौता हो गया था, लेकिन वही लोग के जो बैरूनी ताकत के इशारे पर पाकिस्तान में बदनामी फैला रहे हैं, पाकिस्तान को आदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं, कि यही लोग जो है इनको दोबारा आश्रय दी गई कि इस अमन महादे को खत्म कर दिया जाए और बस में जो बेचारे ईद के रोज वो सफर कर रहे थे उनको उतारा गया, उनकी शनाख्त कराई गई और जो अहले तशी थे उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। तो ये जो सूरत हाल है इसमें वो सारी कुव्वतें के जो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुकून हो, अमन हो, इक्तिसादी तरक्की हो और समाजी खुशहाली हो, वो सब मिल गए हैं। और मिलने के बाद क्योंकि शिया सॉफ्ट टारगेट है और उसको वो टारगेट बनाते हैं, उनको वो कत्ल करते हैं।
नाज़रीन, अमरीका का बजट खसारा एक लायनहल मुश्किल में तब्दील हो चुका है जिस पर मुल्क के मुख्तलिफ हलकों को गहरी तश्वीश लाहक है। मुलाजा फरमाइए हमारा ये तबसरा।
अमरीकी कांग्रेस के बजट दफ्तर ने कहा है कि माली साल 2012 में भी मुल्क को बजट खसारे का सामना करना पड़ेगा और तवक्कु है कि रवां साल सितंबर के अख्तितम तक इसका हजम $1,100,000,000,000 से भी ज्यादा हो जाए। अमेरिका में गुज़िश्ता 4 बरस से मुसलसल 1 ट्रिलियन से ज्यादा का बजट खसारा चला आ रहा है और इसमें थोड़ी बहुत ही कमी देखने में आई है। अमेरिका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च करता चला आया है, हालांकि टैक्सों और दीगर इक्तिसादी ज़राए से हासिल होने वाली कुल आमदनी सिर्फ $2,600,000,000,000 के बराबर है, जबकि अमरीका $3,700,000,000,000 के बराबर सालाना खर्च करता है। अमेरिका में बजट खसारे का ताल्लुक काफी हद तक आमदनी और अखराजात में पाए जाने वाले अदम तवाजुन और मालियाती बेजाबतगियों से है। अलबत्ता अमेरिका में बजट खसारे की तारीख बहुत लंबी है और कई अशरों से अमेरिका अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करने का आदि हो गया है। ताहम गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान इसका बजट खसारा $1,000 अरब से ज्यादा हो गया है।
और नाज़रीन, अब तेहरान में नावाबस्ता तहरीक के 16वें सरबराही इजलास की तैयारियां। नाज़रीन, तेहरान में नावाबस्ता तहरीक के 16वें सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नावाबस्ता तहरीक क्या है, इसकी अहमियत क्या है, तेहरान में होने वाले इजलास की अहमियत क्या है और इसके क्या नतायज सामने आ सकते हैं, हम इस तरह के पहलुओं का जायजा लेंगे और इसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर रजा मुसवी नियाज साहब को, जो सियासी उमूर के माहिर हैं। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम।
अच्छा, क्या
डॉक्टर रजा साहब, سب سے پہلے ہم آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ ناوابستہ تحریک کا جو چھوٹا سا تاریخچہ اور مختصر تاریخ ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں کہ یہ تحریک کیا ہے اور کیسے وجود میں آئی اور اس کی اہمیت.
بعض شالودہ یہ جنبش عدم تعهد
ناوابستہ تحریک جو ہے وہ سرد جنگ کے زمانے میں وجود میں آئی جب دنیا دو بلاکس میں جو ہے وہ بٹی ہوئی تھی. انڈونیشیا کے بانگڈونگ شہر میں 1950 میں 50 ملکوں نے جو ہے وہ ایک اجلاس کیا تھا جس میں انہوں نے ملکوں کی خارجہ پالیسی کے تعلق سے بعض سفارشات پیش کی تھیں. ایسے ممالک جو نہ مشرقی بلاک میں شامل تھے اور نہ مغربی بلاک میں شامل تھے اور یہ چاہتے تھے کہ جو ہے وہ عالمی سطح پر ایک منصفانہ روش کے حامل رہیں. تو ان کوششوں کے نتیجے میں ناوابستہ تحریک وجود میں آئی اور مختلف ممالک جو ہے وہ ساتھ میں آئے اکٹھا ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس تحریک کو جو ہے وہ جنم دیا. اس وقت کے امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے خلاف ہے. اور اس زمانے میں جو ہے وہ اس تحریک میں شرکت جو ہے بعض ممالک کے لیے جو ہے وہ پولیٹیکل پریسٹیج بن چکی تھی اور لیبیا نے ایک اجلاس میں جو ہے وہ کہا تھا کہ اس تحریک میں بھی جو ہے وہ بعض اکثریت ممالک کی جو ہے وہ مشرق یا مغرب سے جو ہے وہ وابستہ ہے. بہرحال یہ ایک سیاسی تحریک ہے جو دنیا میں جو ہے وہ اپنا ایک مقام حاصل کرنا چاہتی ہے اور بین الاقوامی نظام میں بڑی طاقتوں سے جو ہے وہ سیاسی طاقت کا توازن نکال کر جو ہے وہ بہتر طریقے سے توازن کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. اور اس تحریک میں 118 ممالک شامل ہیں.
جی ڈاکٹر رضا صاحب, سرد جنگ کا زمانہ ختم ہو جانے کے بعد اور سوویت یونین کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد اس تحریک کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا کردار ہے؟
جنگ سرد کے زمانے میں اور سابق سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک جو ہے وہ مغرب کی طرف جو ہے وہ تھوڑے بہت مائل ہو گئے اور ناوابستہ تحریک جس کے اہداف جو ہیں بڑے واضح تھے وہ اپنے اہداف کے مطابق اپنا عمل جاری رکھ سکتی تھی. لیکن اور جو سر جنگ کے زمانے میں اس نے اپنی کانفرنسیں کی تھی ان کے اہداف کے پیش نظر وہ آگے بڑھ چکتی تھی اور جب سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا تو اس بات کی ضرورت تھی کہ عالمی سطح پر اپنے اسٹریٹجیز پر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے اور ناوابستہ تحریک نے بھی یہ کام کیا اور اس تحریک کے ممالک جو کہ نہ مشرق سے وابستہ تھے نہ مغرب سے وابستہ تھے انہوں نے ایک طرح سے جو ہے وہ دنیا میں سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ عدم توازن کو صحیح کرنے کی کوشش کی اور اس تحریک کی طرف سے جو ہے وہ ترقی پذیر ملکوں کے سیاسی مدد اور اقتصادی مدد کرنے کی کوشش کی، اور لیکن اب تک یہ گول جو ہے وہ پوری طرح سے حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ درحقیقت ناوابستہ تحریک جو ہے ان اہداف کو حاصل کر سکتی تھی، جو کہ ایک بڑی تنظیم ہے۔
اس تحریک کا اجلاس تہران میں ہو رہا ہے، اور اجلاس کو تہران میں منعقد ہو جانے کے اور کامیابی کے ساتھ منعقد ہو جانے کے بعد، بلکہ ہم پہلے یہ بات کریں گے کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اس اجلاس کے انعقاد کی اہمیت کیا ہے، ایسے حالات میں جب تہران کے خلاف مغربی میڈیا سرگرم ہے۔
ببینید، دو تا اہمیت داره، یکی این
هستش که دو لحاظ سے اہمیت
جنبش عدم تعهد
در حقیقت نوابستہ تحریک جب ایران اس کا میزبان ہے تو ایران جو ہے وہ عملاً اس تحریک کے لیے جو ہے وہ نمونے عمل ہے۔ میں ایرانی ہونے کے ناطے نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ ایران مختلف میدانوں میں بھی جو ہے وہ نمونے عمل ہے، اور اس تحریک کے لیے خاص طور سے نمونے عمل اس وجہ سے ہے کہ ایران کبھی بھی نہ مشرقی بلاک میں رہا ہے نہ مغربی بلاک میں رہا ہے، اور اس کی عدم وابستگی بلکہ اس کی مکمل خود مختاری جو ہے وہ ایک بہت ہی مثبت امر ہے، اور وہ مستقل و خود مختار ہے۔ اس سے ناوابستہ تحریک کے تمام ممالک جو ہیں وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ مثبت نقطہ جو ہے در حقیقت مغربی ممالک کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن چکا ہے، اور مغربی ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کی یہ مثبت کارکردگی کہیں ان ملکوں کو بہت زیادہ متاثر نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے تعلق سے اپنی منفی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اوباما اپنے گزشتہ دور میں وائٹ ہاؤس میں آنا چاہتے تھے تو اوباما نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ جارج بش کی خود سرانہ پالیسیاں جو ہیں وہ غلط ہیں، لیکن اوباما نے بھی جارج بش ہی کے نقش قدم پر قدم رکھا، اور وہ ان سے اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عراق اور افغانستان اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے تعلق سے اوباما یعنی امریکی انتظامیہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ ایک عالمی اتفاق رائے حاصل کر سکے، اور اتفاق رائے حاصل کر کے ایران کو تنہا کر دے، اور اس طرح سے وہ ایران کے خلاف جو ہے کامیابی حاصل کر لے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری، عالمی برادری جو ہے وہ امریکہ کے سامنے اب رکاوٹ بن چکی ہے، اور امریکہ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں عالمی برادری کا مفہوم یہ ہے کہ مختلف اقدار میں دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ مشترکہ موقف کے حامل رہیں اور انسانی اقدار کی پابندی کریں، جیسے کہ جنگ ایک بری چیز ہے، ماحولیات کا تحفظ بڑی اچھی چیز ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، اور ان مسائل پر جو ہے وہ عالمی برادری متفق رہتی ہے۔ لہذا عالمی برادری جو ہے وہ اکثر ملکوں، اکثر قوموں کی مشارکت کا مظہر ہے. اب ناوابستہ تحریک کا یہ اجلاس جو ہے وہ امریکہ کے اس دعوے کی ایک کسوٹی ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ عالمی برادری ایران کے خلاف متحد ہے. ناوابستہ تحریک کے تہران اجلاس میں اجلاس کے اختتامی بیان میں ایسے امور کو بیان کیا جانا چاہیے جو اس کے اہداف سے مطابقت رکھتے ہیں, اور فطری طور پر یہ ایران کے اہداف سے بھی مطابقت رکھتے ہیں. بحرین اور شام کے مسائل کے بارے میں بھی اس کو موقف اپنانا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شام کی عوام کی اکثریت کی امنگوں کا احترام کیا جائے, بحرین کی اکثریت کے امنگوں کا احترام کیا جائے, اور ان کے مطالبات کا احترام کیا جائے, یعنی بحرین کے عوام کے مطالبات کا. اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تہران اجلاس کے اختتامی بیان میں شامل کی جائیں گی تو میرے خیال میں امریکہ جس اتفاق رائے کا ادعا کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, وہ غلط ثابت ہو جائے گا.
ڈاکٹر رضا صاحب, یہ اجلاس جو تہران میں منعقد ہو رہا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں دنیا کے ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں, اجلاس کے موقع پہ ان ملکوں کو دو طرفہ اور چند طرفہ گفتگو کا ایک موقع ملے گا, اس تناظر میں یہ اجلاس کتنا اہم ہے؟
تہران میں ناوابستہ تحریک کے اجلاسوں میں جو ہیں وہ اسٹرکچرل پریشانیاں جو ہیں وہ موجود رہی ہیں, کیونکہ ان ملکوں میں بھی داخلی گروہ بندیاں موجود ہیں, کیونکہ مختلف ممالک جو ہیں وہ دنیا کے ممالک عالمی اداروں کے فیصلوں پر بہت زیادہ کاربند نہیں رہتے ہیں, اور صرف ایک اقوام متحدہ ہے جس کے اقوام متحدہ کے ساتویں منشور کے پابندی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے, ورنہ بین الاقوامی تنظیموں کے فیصلوں پر عمل درآمد کوئی لازمی نہیں ہوتا, اس پر عمل درآمد کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہوتی. اور ناوابستہ تحریک کے بارے میں بھی یہی بات صادق آتی ہے, گرچہ اس تنظیم میں 118 ممالک موجود ہیں لیکن ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک بھرپور طرح سے مغرب سے وابستہ ہیں, کچھ ممالک دیگر ممالک سے وابستہ ہیں, اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو واقعا اس کے اہداف پر یقین رکھتے ہیں. یہ ایک طرح سے جو ہے ایک طرح کا پرابلم ہے اس تحریک میں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے اہداف کے حصول کے لیے اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی ضمانت نہ ہونا ہے, جو آپ دیگر بین الاقوامی اداروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ایران نے ایک سفارش ایک تجویز جو دی ہے کہ ایک دائمی سیکریٹریٹ اس کی جو ہے وہ قائم کی جائے, جو بہت مفید واقع ہوگی. اور ایک مسئلہ اس تحریک کے ساتھ جو ہے وہ نیشنلزم بھی ہے, اور چوتھی مشکل یہ ہے کہ اس میں بڑی طاقتوں کا اثر و رسوخ بھی جو ہے وہ کافی حد تک ہے جو مشکلات پیدا کر رہا ہے. ناوابستہ تحریک کی ایک مثبت بات یہ ہے کہ یہ بڑی طاقتوں کی اعلی کار نہیں ہے, साम्राज्य जिस बात में कामयाब हुआ यह है कि इस तहरीक को जो है वो एक तरह से बेअसर बनाने में वो नाकाम रहा है। और अगर इस तहरीक के ममालिक मजीद संजीदगी से काम करें तो ये नावाबस्ता तहरीक जो है वो ज्यादा बाअसर हो सकती है और इसके लिए उन्हें बैरूनी मुदाखलत को खत्म करना चाहिए, क्योंकि बैरूनी मुदाखलत ही इस बात का सबब बनती है कि ममालिक धमकियों का।
सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जी हम आखिरी सवाल मेरा आपसे, हमारे पास 2 मिनट का वक्त है, वो ये कि ईरान की सरबराही और क़यादत में, चूंकि ईरान नावाबस्ता मुल्क है और इसका अमली नमूना है, इस तहरीक में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं?
बल ببینید کی از مزیت های
جمهوری تهران میں اس تحریک کے اجلاس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے جو سیاست خارجہ کے اہداف ہیں ان سے جو ہے اس تحریک کو آگاہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک آدمی جو اپنے اہداف پہ یقین رکھتا ہے اور وہ دوسروں کو بڑے اچھی طرح سے جو ہے متاثر کر سکتا ہے۔ اب تک جو اجلاس ہوتے رہے ہیں وہ ایک طرح سے جو ہے وہ پولیٹیکل شو انہیں ہم قرار دے سکتے ہیں، لیکن اب اسلامی جمہوریہ ایران ان اہداف پر یقین رکھتا ہے، لہذا وہ جو ہے دیگر ممالک کو، اس تنظیم کے ممالک کو متاثر کر کے جو ہے وہ مفید اثرات کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران ناوابستہ تحریک کے اہداف و مقاصد پر یقین رکھتا ہے اور یہ اہداف و مقاصد ایران کے خارجہ پالیسی کے ٹارگیٹ سے جو ہیں وہ مطابقت رکھتی ہیں، لہذا ہمیں مفید نتائج کی امید ہے۔
ناظرین آپ نے آج کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، ناوابستہ تحریک کے اہداف واقعی قابل احترام اہداف ہیں اور بہت دور رس نتائج کے حامل ہیں، دور اندیشی کے تحت اس تحریک کی تشکیل عمل میں آئی تھی اور توقع کرتے ہیں کہ ایران کی سربراہی میں یہ تحریک اپنے اہداف کے مزید قریب ہوگی اور اس کے مطابق عملی اقدامات کرنے پر قادر ہوگی۔ اگلی ملاقات اور اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔